हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मान आदर तनों की प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानी पेय जल के साथ सुव्यवस्थित अत्यंत मुलायम घास, कंद गुफाएं, कंद मूले तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य, उपर्युक्त उद्धरण श्री प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवसर दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो, या सर्दी हो, या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहां हम श्री भरत इनके चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं। रामायण जहां भरत अब अयोध्या लौटे और अयोध्या लौटते ही उन्होंने अपने पिता को उनका स्वागत करते हुए नहीं पाया, अयोध्या नगरी को एक स्मशान भूमि के रूप में देखा। और जब अपनी माता कैकेयी से वो भेंट करते हैं तो उनकी माता कैकेयी जो अब पूर्ण रूप से बदल चुकी है मंथरा के संगत के वजह से, और ऐसे ऐसे समाचार, ऐसे भयंकर समाचार कैकेयी भरत को सुना रही है। और जो षड्यंत्र मंथरा ने रचा और इस षड्यंत्र को मुकाम दिया कैकेयी ने और सूत्रधार बनाया मंथरा ने कैकेयी को, और कैकेयी ये सोच रही थी कि ये सब कुछ वो कर रही थी अपने पुत्र भरत के लिए। तो जब भरत को कैकेयी ने उसकी योजना या उसने जो अपने पुत्र के लिए ये सपने संजोए, ये सब कुछ जानने के पश्चात फिर भरत की प्रतिक्रिया क्या थी, उन्होंने अपनी मां कैकेयी को कैसे दुरुस्त किया, तो ये शिक्षा हमने ली करेक्टिंग विदाउट पनिशिंग। और पिछले हमारे कुछ दो सिटिंग से हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे थे। एक तरफ है क्षमा, क्या भरत ने अपनी मां को क्षमा किया, क्या भरत ने न्याय दिलवाया, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय। और भरत जैसे एक प्रामाणिक राम भक्त जो कि प्रभु श्री राम के मनोभाव को जानते हैं, उनकी सूक्ष्मता को जानते हैं, और ऐसी राम संस्कृति में जो पले बड़े, ऐसे राम विचार का जीवन जो जी रहे थे, उन भरत की प्रतिक्रिया वो सराहनीय है, वो पालन करने योग्य है। और खास तौर पर जब हम इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करते हैं हमारे जीवन में, एक तरफ न्याय और दूसरी ओर क्षमा, तो पिछले हमारी सेटिंग में हमने ये विषय लिया था, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। क्यों हमने इसे ये शीर्षक दिया, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, एक कला, क्षमा करने की भी एक कला होती है। न तो हम न्याय के लिए जी रहे हैं, न हम अन्याय को सहन करते हुए जी रहे हैं, न न्याय न अन्याय, अपितु भगवत आश्रय, उसके लिए हम जी रहे हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब क्षमा करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जीवन में और भी बहुत जरूरी काम है, केवल प्रतिकार, प्रतिशोध, बदला, इससे बहुत और जरूरी काम हमारे जीवन में हैं करने के लिए। अक्सर हमारा कितना समय हम केवल इन्हीं विषयों के ऊपर बर्बाद कर देते हैं, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा, ईंट का जवाब पत्थर से। और यदि सामने ईंट की दीवार बन रही है तो हम उनसे बड़ी दीवार चिनेंगे, तो यहां एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बेटर देन गेटिंग इवन विथ समवन इज टू गेट सेफ. बेटर देन गेटिंग इवन कि उसका जो बदला मैं उसी के सिक्के में दूंगा, पेइंग इन द सेम कॉइन, उससे अच्छा है कि हम एक ऐसा सुरक्षित जीवन जिएं जो कि हमारे स्वयं व्यक्तिगत हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए और जो हमसे संबंधित है उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए वो अनुकूल रहे. बेटर टू बी सेफ देन टू गेट इवन. एक उदाहरण से हम समझाएं. मान लीजिए रास्ते चलते किसी को सांप ने डस दिया. अब डसने के पश्चात सांप जो है रेंगते हुए झाड़ियों में जा रहा. ये व्यक्ति अभी अभी जिसको सांप ने डसा है उसके अंदर क्रोध उस सांप के प्रति, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं अपने रास्ते चल रहा था. और बहुत बार होता है कोई अपने रास्ते चल रहा है अचानक सांप आ जाता है. सांप के विषय में बताया गया है कि उसका जो विष है, जो सांप जैसे विषैले होते हैं बिना कारण डसते रहते हैं. और पिछले हफ्ते जब हमने इसकी चर्चा की कि जब कोई आपके जीवन में बिना कारण, जो आपको समझ में नहीं आ रहा इस जीवन का कारण, कि बिना कारण आपको कोई डस रहा है बार 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 बार, तो समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्म का ये कोई ऐसा विषैला व्यक्ति है जिसको मैंने डसा होगा बहुत, जिसके जीवन में मैं सांप बना होगा. तो सांप डस कर भाग गया, भाग रहा है रेंगते हुए, आप उसके पीछे भाग रहे हो. तेरी जरूरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, उसके पीछे भाग रहे हो उसे मारने के लिए. उस समय क्या कहा जाएगा, बेटर टू गेट सेफ देन टू गेट इवन विद दैट स्नेक. इट्स स्टुपिडिटी, फुलिशनेस टू रन बिहाइंड दैट स्नेक. क्योंकि जितना तुम भागोगे उसके पीछे उतना जो विष है उसने छोड़ दिया तुम्हारे अंदर, वो जल्दी और तेज रफ्तार से तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में, तुम्हारे रक्त में बहेगा. और यदि उस सांप को पकड़ के मार भी दिया तो कौन सा तीर मार लिया. तो जब हम ये महत्वपूर्ण मुद्दे को बैलेंस करें, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें केवल हर चीज सहन करते रहना है, करते रहना करते रहना, नहीं. क्षमा की जगह अपनी है और न्याय की जगह अपनी है. बुद्धिमान व्यक्ति वो है जब उसे ये सीख मिल जाए, ये समझ उसे आ जाए कि कब किसे कहां कितना क्षमा करना चाहिए और कब कहां कितना न्याय उसका डिमांड करना चाहिए. तो जब भरत ने कैकेयी को कह दिया कि जो कुछ तुम्हारा ये षड्यंत्र, मुझे नहीं पता कि किन कारणों के वजह से ये षड्यंत्र तुमने रचा, परंतु सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले सूचित कर दूं हे माते, कि मैं कदापि कतई ये तुम्हारे षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा. इतना कहने के पश्चात कैकेयी को फिर वो, अब जिसको कहते हैं ना कि उसके आंखों के सामने तारे दिखने लगे, जिसको कहते हैं कि अचानक अब जो पर्दा था, जो भ्रम था उसके सामने, वो सारे भ्रम के बादल छट गए. भरत कैकेयी को वहीं छोड़ते हैं और उसके पश्चात जाते हैं कौशल्या, माता कौशल्या से मिलने. क्योंकि तुरंत उन्होंने माता कौशल्या के विषय में सोचा कि राम उनके जो इतने प्रिय पुत्र, माता कौशल्या किस दौर से गुजर रही होगी। तो जैसे ही माता कौशल्या उनके कक्ष में भरत प्रवेश करते हैं तो माता कौशल्या वो भरत को देखकर वो भरत को पुकारती है, आओ अयोध्या नरेश, आओ अयोध्या नरेश, अयोध्या पति आइए। क्या इसमें सुनाई दे रहा है आपको? व्यंग, इसके अंदर है टॉन्ट, जिसे हम कहते हैं सरकैज़म। तो ये जब उन्हें उल्लेख किया गया भरत को, अयोध्या नरेश आइए अयोध्या पति, खुश तो बहुत हो रहे होंगे तुम आज। तो एक एक शब्द माता कौशल्या के वो भरत को वज्रपात के समान लग रहे थे, एक एक शब्द। और कौशल्या ने कहा कि तसल्ली में होंगे हे अयोध्या नरेश, तुम्हारे सारे जो सपने तुमने इतने वर्षों से जो संजोए होंगे वो साकार हो रहे ना, साकार हो रहे होंगे। तुम्हारी मां जैसी मां मैंने आज दिन तक नहीं देखी, ऐसा पुत्र प्रेम कौन मां दिखा सकती है? आज तक मैंने ऐसा वात्सल्य मातृ प्रेम नहीं देखा कि अपने पुत्र के खातिर जो अपने स्वयं के पति को मरवा दे, और साधारण पति नहीं, दशरथ रघुकुल के राजा दशरथ ऐसे पति को जो मरवा दे अपने पुत्र के प्रेम के चलते, ऐसी मां नहीं देखी। और फिर कौशल्या कहती है कि अरे ये जो षड्यंत्र तुम लोगों ने, क्या कहा? तुम लोगों ने, किसने? तुमने, तुम्हारी मां ने, और भी जो कोई होंगे इसके अंदर, लेकिन मुख्य रूप से इस पार्टी के दो सदस्यों को उल्लेख कर रही है, भरत और कैकेयी, कि तुम लोगों ने जो षड्यंत्र रचा, मुझे क्यों नहीं शिकार बनाया तुम्हारे षड्यंत्र का? खाली बेगुनाह राम को क्यों बनाया? अरे मुझे भी वनवास दिला देते, ताकि जो हमारे मरे हुए दशरथ, और कौशल्या कहती है मेरे मरे हुए पति, मेरे मरे हुए पतिदेव, ये नहीं कह रही कि तुम्हारे पिता। कौशल्या क्या कहती है? मेरे मरे हुए पतिदेव, उनको मैं ले जाती वन में, और कम से कम जो ज्येष्ठ पुत्र हैं दशरथ के, मेरा राम, वो अंतिम संस्कार तो कर पाता, उसके लिए भी तुम्हारे षड्यंत्र ने उसके लिए भी नहीं छोड़ा। और यदि तुम्हें यह लग रहा है कि तुमने मुझे यहां पर अयोध्या नगरी में गिरफ्तार कर रखा है ताकि मैं वनवास न जाऊं, शर्त के अनुसार खाली राम को तुमने वनवास भेजा, और तुम्हारे षड्यंत्र के अनुसार मैं यहां पर रहूं, क्योंकि जब राम को पता चलेगा कि उनके वनवास जाने के पश्चात दशरथ कि तुम्हारे षड्यंत्रों ने हत्या की, वो ये नहीं कह रही कि दशरथ का देहांत हुआ, दशरथ की हत्या की तुम्हारे षड्यंत्रों ने। जब राम को यह पता चलेगा तो राम लक्ष्मण को लेकर धावा बोलेंगे, प्रहार आक्रमण करेंगे अयोध्या के ऊपर, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें तुम्हारी मां और तुम्हारे सारे के ये जो पार्टी वाले हैं सबको मारने के लिए आएंगे राम और लक्ष्मण। परंतु जब वो देखेंगे कि अरे मेरी स्वयं की मां कौशल्या है इस राजमहल में, तो मुझे देखते हुए राम रुक जाएंगे। तो ये भी तुम्हारा षड्यंत्र होगा कि तुमने मुझे नहीं शिकार बनाया तुम्हारे षड्यंत्र का, ताकि तुम्हारा राजमहल बचा रहे। देखो कौशल्या कहां कहां किस हद तक सोच रही थी। और कल्पना कीजिए, यदि हम भरत के जगह पर होते, जहां हम बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, कुछ हमने नहीं किया बिना कारण, जब किसी बेगुनाह को यह सब सुनना पड़े तो उस पर क्या गुजरती है, और वो भी किसके मुंह से, कौशल्या जैसी उनकी मां, राम की मां कौशल्या, राम जो इतने प्रिय भरत के, उनके आराध्य, जो कि भरत के आराध्य राम और राम की आराध्य मां, वो ऐसी बात यदि कह रही है तो ये जो अगली शिक्षा है कि भरत ने ये किस प्रकार से झेला। ओनली प्योर गोल्ड कैन विदस्टैंड द टेस्ट ऑफ फायर। यहां से रामायण में यहां से शुरू होता है। अब भरत को जिस कसौटी पर रखा और भगवान ने स्वयं भरत जैसे किरदार को इस कसौटी पर रखा है, क्योंकि केवल भरत जैसे व्यक्ति ही इसे संभाल पाएंगे। और कोई होता तो वो कब का टूट गया होता, कब का आत्महत्या कर लिया होता, कब का वो मार दिया होता प्रतिशोध में, अलग अलग जो भी इसके अंदर पार्टी मेंबर्स थे उनको। तो यहां से भरत जो कि शिकार हुए गलत फहमी का, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने, 7 लोगों के, एक एक कर कर। अब तो सबसे पहले कैकेयी अयोध्यावासी, सबसे पहले कैकेयी ने कैसे भरत को मिसअंडरस्टैंड किया। कैकेयी तो यह सोच रही थी कि भरत बहुत प्रसन्न होगा। अब देखिए, मंथरा ने जो कुछ कैकेयी को सुनाया और कैकेयी ने मंथरा से सुनने के पश्चात कैकेयी ने यही सोचा कि मैं अपने पुत्र भरत का जो भविष्य है मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक मां हूं उसकी, मेरी जिम्मेदारी है कि अपने पुत्र के भविष्य को उज्जवल बनाए। तो कैकेयी बिल्कुल भी अपने आप को कहीं गलत नहीं समझ रही थी। कब तक, जब तक कि भरत के मुख से यह नहीं सुन लिया कि तुम्हारे इस षड्यंत्र को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, तब तक कैकेयी ये समझ रही थी कि मैं जो कुछ कर रही हूं वो सब एक मां, एक जिम्मेदार मां को अपने पुत्र के लिए करना चाहिए। इमेजिन क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कैकेयी के अंदर थी। जैसे महाभारत में दुर्योधन के विषय में बताया गया है कि दुर्योधन, उसने ये लाइन कही और किन किन को कही, भगवान श्री कृष्ण को और जितने अग्रज जैसे भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, इन सबको दुर्योधन ने एक लाइन कही, आफ्टर डीप कंटेम्पलेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन आई हैव रियलाइज्ड दैट आई हैव नेवर मेड अ सिंगल मिस्टेक इन माई लाइफ. आई वॉज नेवर एट फॉल्ट. और बहुत सीरियसली दुर्योधन वो इस बात को मानता था. तो कैकेयी ने मंथरा से सुनकर और फिर भरत आने से पहले वो जो समय था मंथरा से सुनने के पश्चात और फिर जो कुछ दशरथ को कह दिया और राम इनको वनवास दिला दिया और भरत अब तक पहुंचे नहीं है, दशरथ का देहांत हो चुका है और सुसज्जित कैकेयी बैठी हुई है प्रतीक्षा में अपने पुत्र भरत के. तो सुसज्जित बैठी कैकेयी क्या सोच रही है वो, कैकेयी ने एक काल्पनिक भरत का निर्माण किया. किसका? एक काल्पनिक भरत का निर्माण किया और एक ऐसे काल्पनिक दुनिया में कैकेयी पहुंच गई जहां पर कैकेयी अब भरत के आने से पहले ये सब सोच रही थी कि जब भरत ये समाचार सुनेगा कि मैंने देखो कितना जोखिम उठाया उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, तो जब भरत ये सब कुछ सुनेगा तो भरत आनंद के मारे वो उछल पड़ेगा, नाचने लगेगा, कैसी शाबाशी देगा वो मुझे. ये काल्पनिक भरत का निर्माण कैकेयी कर रही थी. और जब असलियत में भरत आए तो एक तरफ कैकेयी द्वारा पैदा किया गया ये काल्पनिक भरत और ये असली के भरत, जब इनका आमना सामना हुआ और कैकेयी ने जब इन दोनों भरत को देखा अपने सामने, तो वो जो गुब्बारा था उस कल्पना का, कपोल कल्पित गुब्बारे को जब असली भरत ने फोड़ दिया, तब कैकेयी अपने होश में आई, तब उसे असली भरत दिखाई दिया और तब उसे असलियत अपनी समझ में आई. तो यहां भरत शिकार हुए सबसे पहले गलत फहमी के. किसके? अपने स्वयं की मां कैकेयी के. उसके पश्चात अयोध्यावासी, उसके पश्चात कौशल्या, वशिष्ठ मुनि. ये जैसे प्रसंग आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि वशिष्ठ मुनि ने कैसी परीक्षा ली भरत की, गुहा, भरद्वाज मुनि और अंततः लक्ष्मण. और फिर जब राम भरत का मिलाप होता है तब भरत वो इन सारे कसौटियों से खरे उतरते हुए जब पहुंचते हैं और अपने आप को प्रामाणिक और बेगुना साबित करते हैं अपने चरित्र के द्वारा, तब उन्हें प्राप्त होती है राम पादुका. तो यदि राम पादुका अर्थात रामाश्रय, राम कृपा, उसकी हम तुलना करें, तो यदि किसी को रामाश्रय चाहिए, किसी को राम की कृपा चाहिए, तो ये जो कसौटियां हैं इनसे गुजरना होगा, तब जाकर भरत जैसे कोई राम कृपा पात्र बन सकता है. प्राप्त करनी है राम कृपा तो ये देख लीजिए, इतना आसान नहीं है, इन सब से गुजरते हुए जाना है. तो अब इसके संदर्भ में आज का जो हमारा विषय है वो ये है, मिसअंडरस्टैंडिंग. अक्सर दो व्यक्तियों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये इमेज मिला, दो व्यक्ति माचिस की तीली के समान होते हैं, दोनों के सर पर क्या होता है, इतना बारूद होता है जलने के लिए और जलाने के लिए। गलत फहमी हर समय दो व्यक्तियों के बीच में होती है, और अक्सर दो व्यक्ति वो होते हैं जो करीब होते हैं सब एक दूसरे के, परंतु प्रकृति इन दोनों व्यक्तियों के सर में इतना बारूद छोड़कर चली जाती है कि जब अब माचिस की तीली अपने आप आग नहीं पकड़ती, कभी इतनी सारी तीलियां माचिस की डिब्बी के अंदर होती है, सुरक्षित होती है, लेकिन एक माचिस की तीली को आप निकालो और उसे घिसो तो जब वो घर्षण होता है, उस घर्षण के वजह से वो जो बारूद जिसके अंदर, वो एक तीली के अंदर क्षमता है पूरे एक वन को जलाने की, इतनी सी माचिस की तीली के अंदर क्षमता है पूरे वन को जलाकर राख करने की। तो कल्पना कीजिए ऐसी दो तीलियां जिनके ऊपर ऐसा बारूद चिपकाया हुआ है, और अक्सर यहां जैसे माचिस की तीली के भी सर पर बारूद होता है, और जो सर्कमस्टेंसेस जिसको बोलते हैं, परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती है कि जब वो दोनों बारूद विस्फोटक हो जाते हैं। कुछ समय पहले एक लड़का मुझे कह रहा था, आजकल ये जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, मुझे कह रहा था, प्रभु जी मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। मैंने कहा क्या हुआ? मेरी जीएफ ने मुझे दगा दिया। तो मुझे पता नहीं था जीएफ क्या होता है, तो मैंने कहा जीएफ क्या होता है? बोला प्रभु जी आपको जीएफ नहीं पता? मैं उसका बीएफ, वो मेरी जीएफ। मैंने कहा भाई पहले जीएफ बताओ, बाद में बताना बीएफ क्या होता है। बोला मैं बॉयफ्रेंड और वो मेरी गर्लफ्रेंड। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि एक आदमी के जीवन में कोई बखेड़ा खड़ा करता है तो जीएफ, किसी आदमी के जीवन में बखेड़ा खड़ा करता है तो जीएफ, उसका बसा बसाया परिवार उजाड़ देता है जीएफ, उजाड़ देती है सॉरी बसा बसाया परिवार उजाड़ देती है जीएफ। उस आदमी को अपने घर के उनके माता पिता उनके भाई से अलग कर देती है जीएफ। और इस दुनिया में यदि दो व्यक्तियों के अंदर कोई दहशत पैदा कर सकती है तो वो है जीएफ। आपको लग रहा होगा गर्लफ्रेंड, नहीं, गलत फहमी। इसको कहते हैं गलत फहमी। मैं बोल रहा था तब आप क्या समझ रहे थे? तो यहां के भक्त बहुत खुश हो रहे थे। इसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेसिपी फॉर रुइनिंग रिलेशनशिप्स। यदि आपके संबंधों को आपको पूर्ण रूप से विध्वंस करना है तो ये विधि है, ये रेसिपी है। जैसे जब मैं इस्कॉन चौपाटी के मंदिर में था, तो वहां का जो डीटी किचन है, राधा गोपीनाथ जी का जो डीटी किचन है, वहां पर एक ऐसी घटना हो रही थी कुछ हफ्तों तक कि जो भी गोपीनाथ जी के लिए सुबह स्वीट राइस बनता वो फट रहा था, स्वीट राइस वो खीर फट रही थी, हर दिन खीर फट रही थी, क्योंकि वो बना के उसको फ्रिज में रख देते थे, सुबह जब पुजारी उसको ऑफर करने के लिए तो पूरी फटी हुई खीर। समझ में नहीं आ रहा था कि ये खीर फट क्यों रही है। तो जब तहकीकात की गई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पता चला कि शक्कर का जो डिब्बा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था शुगर, उस डिब्बे के अंदर शक्कर के बदले नींबू फूल। अब नींबू फूल वो भी शक्कर के दानों के तरह एग्जैक्टली दिखता है, आप लोग जानते हैं नींबू फूल, सिट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो क्या हो रहा था कि शक्कर समझकर नींबू फूल खीर में डाला जा रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग इज नॉट व्हेन अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग। इसका मतलब ये नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हेन द राइट अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग। सो मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हेन समथिंग इज मिसिंग एंड समथिंग इज प्रेजेंट। जैसे कि खीर में शक्कर इज राइट जो इंग्रेडिएंट है, राइट इंग्रेडिएंट इज मिसिंग एंड रॉन्ग इंग्रेडिएंट इज प्रेजेंट। एक है कि शक्कर डाली नहीं और दूसरा है शक्कर के बदले नींबू फूल डाला। सो मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हेन द राइट अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इज प्रेजेंट। जैसे कि एक दंपति, तो पत्नी वो गांव की थी, उसे केवल जो गांव की शिक्षा प्राप्त थी, अंग्रेजी वगैरह नहीं आती थी, और पति जो कि शहर का रहने वाला, अंग्रेजी वो मीडियम में सीखा हुआ, तो वो अपनी पत्नी को अंग्रेजी सिखा रहा था। तो उसने घरेलू जो शब्द हैं वो पहले सिखाए अंग्रेजी के, यदि कोई मेहमान आए तो कम से कम जो घरेलू शब्द हैं अंग्रेजी के वो पता हो इसे। तो उसे सिखाया कि लंच किसे कहते हैं, ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं, डिनर किसे कहते हैं, ये सब कुछ सिखाया। तो दोपहर के 12:30 बजे रविवार के दिन पत्नी ने खाना परोसा और अपने पति को कहा डिनर इज रेडी। क्या कहा? दोपहर के 12:30 बजे खाना परोसा और पति को कहा डिनर इज रेडी। हंसने लगा पति, इतना सिखाया इसे। और फिर उसको पहले बुलाया, बोला पगली दोपहर के 12:30 बजे को लंच कहते हैं। उसने कहा नहीं, डिनर इज रेडी। झगड़ा शुरू हुआ। पति कह रहा है कि अरे इसको लंच बोलते हैं, पत्नी बोल रही है कि नहीं डिनर इज रेडी। तो जब गर्मा गर्मी हुई, मामला इतना बढ़ गया कि पति ने कॉन्फिडेंस देखा पत्नी का, तो पति का कॉन्फिडेंस हिल गया। इतना कॉन्फिडेंटली पत्नी बोल रही है कि नहीं डिनर इज रेडी। तो पति पूछता है कि ठीक है, मान लिया तुम जो बोल रही हो ठीक है, तो इसको प्रूव करो, प्रूव करो। तो पत्नी कहती है ये कल रात का खाना है, गरम करके रखा है। अब आप बताइए कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत। समय था लंच का, लेकिन जो परोसा वो पिछले रात का डिनर था। तो पत्नी ने कुछ गलत नहीं कहा, डिनर इज रेडी। इसे कहते हैं गलत फहमी। समझ में आ रही कि जहां अंडरस्टैंडिंग मिसिंग नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इज प्रेजेंट। ये हाल ही में अमेरिका के एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ध्यान से पढ़िए, दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बताऊं, ये सच्ची घटना है। मैन फेक्स बीइंग डेफ एंड डम फॉर 62 इयर्स टू अवॉइड लिसनिंग टू वाइफ। पूरा डिटेल्ड आर्टिकल है कि 62 साल तक ये बंदा, ये जिसको कहते हैं गूंगा और बहरा, उसका नाटक करा किया इसने। तो सोचिए कि किस पीड़ा से ये गुजर रहा होगा कि 62 साल तक उसने नाटक किया गूंगा और बहरा रहने का। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि कोई इतना ज्यादा कपटी व्यक्ति कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा हिपोक्रिटिकल कोई पति कैसे हो सकता है। तो इस पूरे आर्टिकल में लिखा गया है कि उसके 6 बच्चे, यहां पर लिखा गया कि उसके 6 बच्चे, उनकी परवरिश इन सारे सालों में हुई और वो पत्नी ने 2 साल लगाए, साइन लैंग्वेज सीखी उसने अपने पति के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। साइन लैंग्वेज होता है ना, वो जो जिनको सुनाई नहीं देता है, मूक बधिर, उनके लिए वो जो लैंग्वेज होती है, तो वो लैंग्वेज सीखी, उसके साथ वो कम्युनिकेट करती थी। और पति पकड़ा कब गया, जब बार में एक बार वो वहां पर मैच देख रहा है, चिल्ला रहा है, और फिर जब इसको पता चला कि ये तो नाटक कर रहा था, इसको सब कुछ सुनाई देता है और ये अच्छी अच्छे से बोल पाता है। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि यदि ये 62 साल पहले, क्योंकि बहुत बातूनी इसकी पत्नी, तो 62 साल पहले यदि वो ये कदम नहीं उठाता तो उनका तभी डिवोर्स हो गया होता। तो अपने बच्चों की परवरिश को देखते हुए इसने 62 साल तक ये ढोंग स्वांग रचा। अब आप बताइए सही कौन है, गलत कौन। इसको कहते हैं GF, गलत फहमी। तो हां, आगे चलकर जब ये 80 साल का हुआ, उसके बाद फिर पत्नी ने डाइवोर्स फाइल किया, लेकिन तब तक जो उसके मन में था कि मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए, हम दोनों अलग ना हो, क्योंकि पहले अगर हो जाता है तो ये मेरी पत्नी इतनी बातों नहीं, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, झगड़े होंगे, तलाक तो निश्चित है, क्या होगा इन 6 बच्चों के। तो इसलिए उन 6 बच्चों को बचाने के लिए इस पति ने 62 साल तक अपने आप को गूंगा बनाया और बहरा बनाया। अब आप है जज और आप फैसला कीजिए सही कौन गलत कौन। घबराइए मत, जो भी उनका होना था हो गया, हम किसी को आइडिया नहीं दे रहे यहां पर, ये कोई नुस्खा नहीं है तलाक बचाने का। तो हम रामायण से जो कुछ ऐसे पेयर्स हैं, ब्रदरली पेयर्स, उनके इंटरेक्शन, उनको देखेंगे। सबसे पहला पैर 2 भाइयों का, राम और लक्ष्मण, दूसरा पैर भरत और शत्रुघ्न, तीसरा रावण और विभीषण, और चौथा पैर वाली और सुग्रीव। तो राम और लक्ष्मण, ये 2 भाई रामायण के अंदर, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? नॉन एनवियस कोऑपरेशन। राम और लक्ष्मण के बीच जो भ्रातृ प्रेम, वो इसका प्रतीक है। देखिए, रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण, वो भी 14 वर्ष वनवास उन्होंने किया, परंतु हर समय क्या बोला जाता है, राम वनवास। कभी आपने सुना लक्ष्मण वनवास? कभी नहीं सुना होगा लक्ष्मण वनवास। हर समय राम वनवास सुने हैं। तो कभी लक्ष्मण 14 साल बाद वो डिमांड नहीं किए, अरे मैं भी तो सहन किया 14 साल और मैं तो बिना पत्नी के था, मैं तो अकेला, मेरी पत्नी उर्मिला वो तो अयोध्या में थी। कभी उन्होंने डिमांड नहीं किया। और जब उसके पश्चात रामचंद्र जी अयोध्यापति बने तो कलयुग का कोई भाई होता तो कलयुग का भाई सबसे पहले हिस्सा मांगता। क्या मांगता? भैया मेरा क्या हिस्सा है, मेरा हिस्सा बताओ। कलयुग में होता है ना, भाइयों के बीच में सबसे पहले जब एक उम्र हो जाती है, दोनों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उसके बाद में बंटवारा, अब मेरा हिस्सा तेरा हिस्सा। लक्ष्मण कभी कि मैंने भी जो इतना सहन किया वनवास में, इतनी सेवा करी, तो क्या खाली आप ही राजा बनेंगे? और दोनों की, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था बाय द वे, ऐसा नहीं था। हाँ ये बात अलग है कि रामचंद्र जी वो ज्येष्ठ पहले पैदा हुए, एक ही दिन विवाह हुआ दोनों का, तो दोनों एक ही उम्र के और दोनों का विवाह भी एक ही दिन हुआ, एक समान दोनों को मान सकते हैं हम। परंतु लक्ष्मण ने कभी अपना हिस्सा डिमांड नहीं किया। इसलिए ये जो दोनों भाई हैं ये प्रतीक हैं किसके, नॉन एनवियस कोऑपरेशन। खाली कोऑपरेशन नहीं, कई बार हम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और मन मार के करते हैं, पूरा सब अनर्थों के साथ द्वेष करते हुए, लड़ाई झगड़े करते हुए, अब क्या करें, रहना ही पड़ेगा, मरता क्या ना करता, कर लो कोऑपरेशन, नॉन एनवियस कोऑपरेशन। यदि भरत और शत्रुघ्न उनको देखें तो ये दोनों प्रतीक हैं सेल्फलेस सैक्रिफाइस। अब देखिए क्या बलिदान इन दोनों भाइयों का। सबसे पहले तो रामचंद्र जी का गुणगान इतना होता है बलिदान के प्रति, उसके ऊपर लक्ष्मण उनके ऊपर बलिदान के प्रतीक बने, परंतु उसके ऊपर भरत बलिदान के प्रतीक बने, परंतु सबसे ज्यादा रामायण के टीकाकार कहते हैं कि शत्रुघ्न वो शिरोमणि है बलिदान के, क्योंकि वहां उनका नाम कहीं पर मेंशन नहीं है। भरत कम से कम वो रामचंद्र जी के पास गए, रामचंद्र जी के साथ जो उनका प्रसंग, इतना आदान प्रदान जो हम इतने चर्चा कर रहे हैं इतने वर्षों से, भरत उनको कहीं तो रामचंद्र जी का सानिध्य, रामचंद्र जी की डायरेक्ट कृपा, ये सब। शत्रुघ्न उन्हें तो कोई भी किसी भी प्रकार का डायरेक्ट एसोसिएशन या डायरेक्ट कृपा रामचंद्र जी के साथ, ऐसा कोई भी पास्ट टाइम कहीं मेंशन ही नहीं है राम और शत्रुघ्न का, और फिर भी उनको नाम शत्रुघ्न दिया हुआ है, जबकि वो केवल एक शत्रु का प्रहार किए, एक शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, वो था लवणासुर। तो शत्रुघ्न नाम क्यों मिला इन्हें? क्योंकि कई बार राम के निकट होने के वजह से जो अहंकार पैदा हो जाता है, उस अहंकार पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उस शत्रु पर, उस अभिमानी शत्रु के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की है, वो है शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न ने निस्वार्थ भाव से एकनिष्ठ होकर भरत की सेवा की, और डायरेक्टली उन्होंने डिमांड भी नहीं किया, अरे मैं क्यों नहीं डायरेक्टली राम की सेवा कर सकता। और दोनों भरत और शत्रुघ्न ऐसा नहीं कि अरे भाई हम दोनों तो नाकारा ही रहे हमारे जीवन में, कुछ तो मिला नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों बैठकर मायूस बैठकर गा रहे हैं मेरा जीवन तेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सेल्फलेस सैक्रिफाइस। यदि इन दो भाइयों को ले, रावण और विभीषण, तो ये किसके प्रतीक? हर समय इन दोनों के बीच, रावण और विभीषण के बीच हर समय डिसएग्रीमेंट, मतभेद, कभी एक मत के नहीं हो। इसलिए हनुमान जी को विभीषण कहते हैं कि मेरी स्थिति लंका के अंदर कैसी है, जैसे कि जीभ नोकीले दांतों के बीच में होती है, ये जिह्वा नोकीले दांतों के बीच में होती है, विभीषण कहते हैं मेरी वो स्थिति। तो वो ये कह रहे हैं इस उदाहरण के द्वारा कि जैसे जीभ और नोकेले दांत जो हैं वो हर समय डिसएग्रीमेंट में रहते हैं। कैसे डिसएग्रीमेंट में रहते हैं? कि जो वस्तु को दांत चबाते हैं वो आस्वादन नहीं कर सकते। टीथ कैन नेवर टेस्ट एंड टंग कैन नेवर च्यू, दोनों के कार्य अलग, परंतु दोनों को एक साथ ही रहना पड़ता है। तो कई बार ऐसे दो भाई होते हैं जिनके दोनों के कार्य विपरीत होते हैं, एक का कार्य टेस्ट करना, एक का कार्य चबाना। लेकिन कई बार भाग्यवश, चाहे उसको सौभाग्य बोलो दुर्भाग्य बोलो, भाग्यवश दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। किसको? नोकीले दांत को और जिह्वा को। तो आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो ये दो भाई हैं। हमारा आज का विषय क्या है? मिसअंडरस्टैंड। तो वाली और सुग्रीव, ये जो दो भाई, इनके बीच क्या हुआ? जो इनके बीच जो गलतफहमी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो भी साधारण मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये शुरुआत इस गलतफहमी की कहां से हुई और इस गलतफहमी का अंत कहां से हुआ, मतलब ये एक ऐसी स्टोरी है वाली और सुग्रीव की। यदि इस स्टोरी की बारीकी को हम समझने जाएं तो हम हमारे जीवन की जितनी गलत फहमियां हैं, जितने जीएफ्स हैं, उन सब को हम दूर कर सकेंगे। तो क्या शिक्षा है वाली और सुग्रीव? जजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। यदि हम हमारे हृदय को एक अदालत समझें, हमारा हृदय एक अदालत है, तो इस अदालत में यदि जज बिना ठीक से पैरवी किए, बिना ठीक से सुनवाई किए यदि जजमेंट पास कर देता है तो उसे कहते हैं जजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर हमने कोई ठीक से सुनवाई नहीं करी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया, तुरंत हम जजमेंट पास कर देते। तो वाली और सुग्रीव के जीवन में ये कैसे हुआ? तो ये घटना, ये जो प्रसंग है रामायण के अंदर, हो सकता है कि हमने ये प्रसंग बहुत बार सुना होगा, परंतु आज हम इस लाइट में इस प्रसंग को सुनेंगे। तो वाली वो इंद्र के पुत्र और सुग्रीव सूर्य के पुत्र, और इन दोनों को ऋक्षराज के द्वारा वानरों का सरदार बनाया, और इसलिए ये दोनों भाई के रूप में ये प्रकट हुए। और वाली इतना शक्तिशाली, क्योंकि इंद्र जो है वो देवराज हैं, वो सूर्य के भी ऊपर हैं, इसलिए वाली के पुत्र सॉरी इंद्र के पुत्र वाली वो सुग्रीव से ज्यादा शक्तिशाली, और ऐसी शक्ति वाली के अंदर यहां तक कि रावण वो घुटने टेक दिया था वाली के सामने, ऐसी शक्ति वाली के अंदर थी। और वाली को एक ऐसी शक्ति, ऐसा वरदान वाली को मिला हुआ था कि वाली जिस किसी के साथ लड़ता वन टू वन कॉम्बैट में, तो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है उसकी आधी शक्ति वाली को प्राप्त होती रहती, हाफ ऑफ द एनर्जी ऑफ द ओपोनेंट वाली वुड कीप गेटिंग। कल्पना करो कि इस प्रकार का वरदान वाली को मिला हुआ था। तो ऐसी शक्ति के साथ वाली वो सब जगह पर वो अपने अपना कहर ढाया हुआ था लोगों के ऊपर। हां, वो कोई राक्षस नहीं था वाली, परंतु उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो कि, जिसको कहते हैं ना कि जब किसी के पास बहुत पावर और बहुत मान सम्मान उसको मिलता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो मति थोड़ी फिर जाती है। तो वाली की थोड़ी ऐसी मति फिरी हुई थी। तो एक मायावी नाम का राक्षस, मायावी नाम का राक्षस आता है किष्किंधा क्षेत्र में, और वो किष्किंधा में प्रवेश नहीं करता, किष्किंधा के सीमा पर वो ललकारता है युद्ध के लिए वाली को। और वाली जब सुनता है कि ये कौन है जो अकेला मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, तो वाली अपना गदा उठाता है और वाली निकल पड़ता है इस मायावी राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए। अब देखिए, सुग्रीव और वाली, इन दोनों का जो प्रेम और इन दोनों की घनिष्ठता इतनी कि जैसे ही वाली निकल पड़ता है तो सुग्रीव ऐसा भ्रातृप्रेमी कि सुग्रीव भी पीछे पीछे कि नहीं, मुझे पीछे पीछे अपने भाई के साथ रहना चाहिए यदि कुछ हो गया। शक्ति पर पूरा विश्वास है वाली के, परंतु फिर भी कुछ हो गया तो फिर मैं वहां पर होना चाहिए मदद करने के लिए। अब देखिए, इस पूरे प्रसंग में गलत फहमी कहां कहां उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। तो मायावी ने जब देखा कि वाली के साथ उसका भाई सुग्रीव भी आ रहा है, तो सबसे पहले मायावी ने ये गलत फहमी का शिकार वो बना। उसने कहा मैंने अकेला वाली को ललकारा था, ये सुग्रीव भी साथ में आ रहा है, मैं दोनों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। सुग्रीव लड़ाई नहीं करने के लिए आ रहा है, सुग्रीव एज अ बैकअप प्लान जिसको बोलेंगे, क्योंकि नियम क्या था, 1-1, इसलिए सुग्रीव उसका उल्लंघन नहीं करने वाले थे। सुग्रीव के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, और वाली ने भी सुग्रीव को कह दिया था कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वाली ने सुग्रीव को रोक दिया था, परंतु फिर भी भाई के प्रति चिंता प्रेम, उसके कारण सुग्रीव निकल पड़ते हैं। परंतु मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले किसके मन में आता है, मायावी। तो ये देखते हुए दोनों आ रहे हैं तो मायावी भागने लगता है। वाली देखता है, पहले तो ये ललकारता है और अब ये भाग रहा है, अब तो मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। तो वाली पीछे पीछे भागता है, इस मायावी के पीछे पीछे भागता है। ये मायावी भागते 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 एक ऐसे गुफा में प्रवेश करता है जिस गुफा के अंदर अलग अलग प्रकार के, जिसको कहते हैं कैटकॉम्स और मेज, ऐसी अलग अलग गुफाएं जहां पर भूल भुलैया जिसको आप कहोगे, ऐसी भूल भुलैया इस गुफा के अंदर कि कोई खो जाए। तो ये मायावी उसके अंदर प्रवेश कर दिया था उस गुफा में, और वाली पीछे पीछे उस गुफा में इस मायावी को पकड़ने के लिए, उसको दंडित करने के लिए वाली घुस जाता है। और सुग्रीव को वाली कहता है कि तू इस गुफा के मुख पर, तू यहां पर खड़ा रहे। क्यों खड़ा रहे, कहीं ये मायावी मेरे हाथ से छूटकर निकल आए तो तू खत्म करना उसे। तो सुग्रीव कहा ठीक है जरूर। तो सुग्रीव कहां खड़ा है, उस गुफा के एंट्रेंस पर खड़ा है, वाली अंदर। एक महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते, कल्पना करो इतना समय सुग्रीव वहां पर प्रतीक्षा कर रहा है, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आदेश अपने भाई का पालन कर रहा है सुग्रीव, खड़ा हुआ है वहां पर, ड्यूटी पर है। बहुत समय बाद उसको आवाज सुनाई देती है उस मायावी की चिल्लाते हुए। अब इसे समझ नहीं आ रहा, सुग्रीव को समझ नहीं आ रहा कि क्या ये जो पुकार है इस राक्षस की, क्या ये इसकी पीड़ा की पुकार है या विजय की पुकार है। इज ही क्राइंग आउट ऑफ एग्नी और इज ही शाउटिंग आउट ऑफ विक्ट्री। तो सुग्रीव यहां पर अब गलत फहमी का शिकार बनते जा रहा है, अब वो अनुमान लगा रहा है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है ये। वो आवाज सुनाई दी, उसके पश्चात कुछ आवाज नहीं। तो सुग्रीव सोचने लगा, बाहर खड़ा कि हो सकता है कि उस मायावी ने वाली के ऊपर प्रहार कर मार डाला होगा। अब यदि वो वाली के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है तो वो यदि बाहर आए तो अवश्य ही, मैं तो वाली से कम शक्तिशाली हूं, तो अवश्य ही वो मुझ को प्रहार मुझे मारकर वो तो पूरा किष्किंधा क्षेत्र हड़प लेगा। तो यदि वाली मर चुका है तो अब मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं किष्किंधा राज्य को बचाऊं। कहां कहां सोचा जा रही है उसकी। तो कम से कम मैं इस मायावी को यहां से बाहर न आने दूं, इतना तो मैं कर सकता हूं। तो उसने क्या किया, एक बड़ा पहाड़ जैसा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख को बंद कर दिया। और फिर लौट गया, किष्किंधा राज्य में लौट गया। वहां पर जो वाली की पत्नी तारा, अंगद और पूरा किष्किंधा राज्य, प्रजा, वो सब प्रतीक्षा में हैं। तो समाचार, सुग्रीव रोते हुए, नाटक नहीं कर रहा था सुग्रीव, प्रामाणिकता से, सुग्रीव प्रामाणिक था, प्रामाणिकता से वो ये दुखद समाचार देता है किष्किंधा को कि हमारे राजा नहीं रहे, मायावी के हाथ मारे गए। तो जिसको कहते हैं स्टेट वाइड मोर्निंग, पूरा राज्य वो उस विलाप में। अब हुआ क्या कि उन सब ने, मंत्रिमंडल जो आए वो कहे कि अंगद तो बहुत छोटा है, वो अभी राजा के पद पर नहीं बैठ सकता, किष्किंधा के राज्य के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, तो तुम्हें ही बैठना होगा। तो बिना इच्छा के अपने दिल पर पत्थर रखते हुए सुग्रीव उस पद को स्वीकार करते हैं, राजपद को, किष्किंधा के राजपद को स्वीकार करते हैं। तो राजा बन गए। अब यहां हुआ क्या कि वाली अब तक जिंदा है, थोड़ा फिल्मी स्टोरी लग रही है ना ये असलियत में। तो वाली जिंदा है, मायावी का वध करने के पश्चात इतने समय बाद वाली अब गुफा से बाहर आने का प्रयास कर रहा है। देखा गुफा के ऊपर ये इतनी बड़ी चट्टान, तो अक्सर जब भूकंप वगैरह होता है तो कई चट्टानें गिर जाती हैं और गुफा के मुख बंद हो जाते हैं, परंतु एग्जैक्टली ये ऐसी कैसी चट्टान है जो कि गुफा के मुख को एग्जैक्टली बंद किए हो, जैसे कोई दरवाजा लगाया किसी ने। तो अब वाली पुकार रहा है, सुग्रीव सुग्रीव कहां पर हो, कोई आवाज नहीं। समय बीतता जा रहा है, वाली अपना भूखा प्यासा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, इतने समय तक उस मायावी से युद्ध कर रहा था वाली। यहां देख रहा है कि ये गुफा का रास्ता बंद है और ये अपने से तो बंद नहीं हो सकता, इतनी बड़ी चट्टान अपने से कोई नहीं आ सकती कहीं से। तो अब वाली के मन में गलत फहमी प्रारंभ होती है। वाली क्या सोच रहा है, ये सुग्रीव नहीं किया होगा, सुग्रीव नहीं ये किया होगा। तो अब यहां पर हम देखें कि ये दोनों के अंदर ये जो गलत फहमी कैसे कैसे पैदा हुई। तो सबसे पहला कारण गलत फहमी का, जब हमारा अनुमान केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होता है न कि शब्द प्रमाण पर। हम अनुमान लगाते हैं ना कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसने मुझे ऐसा कहा देखकर, जिसको प्रत्यक्ष कहेंगे। सबसे ज्वलंत उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन ने भगवान को क्या कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो क्या किया अर्जुन ने, दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री अच्युत लेकर आए, तो अर्जुन ने प्रत्यक्ष रूप में कौरव सेना को देखा। जब प्रत्यक्ष प्रमाण सामने दिखा तो अर्जुन अनुमान लगाने लगे, और अनुमान के आधार पर जो प्रथम अध्याय है भगवद गीता का वो क्या है, अर्जुन का अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते हुए। और यदि बाकी के अध्याय नहीं हुए होते, बाकी के अध्याय क्या है, शब्द प्रमाण, यदि बाकी के अध्याय नहीं हुए होते तो अर्जुन परपेचुअली विषाद में रहते, गलत फहमी का शिकार बने हुए रहते। इसलिए सबसे पहला कारण क्या होता है गलत फहमी का, जब हम अनुमान लगाते हैं केवल कुछ चीजों को देखकर, बिना शब्द प्रमाण का सहारा लिए, जब हम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास करते हैं और अनुमान लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। सबसे पहले मैं अपने स्वयं के जीवन का उदाहरण देता हूं। 1995 सबसे पहले राधा गोपीनाथ की यात्रा जब जयपुर गई थी, मैं उस समय ज्वाइन भी नहीं किया था, मैं दिल्ली में पोस्टेड था, वहां से मैं बहुत नया था भक्ति में, और जब नया कोई होता है ना तो उसके अंदर एक बहुत ही अलग प्रकार का जोश होता है जिसको कहते हैं इमैच्योर एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म बहुत होता है लेकिन इमैच्योर होता है, और मिसप्लेस्ड एंथुजियाज्म, तो वो था मेरे अंदर। तो उस यात्रा में मैंने देखा, अंतिम दिन एक पंडाल प्रोग्राम जयपुर इस्कॉन के द्वारा आयोजित किया गया था, गिरिराज महाराज थे, राधानाथ महाराज थे, बड़ा पंडाल प्रोग्राम। तो वहां का कोई ब्रह्मचारी, मुझे नहीं पता कि वो जयपुर इस्कॉन का था कि कहां का कोई ब्रह्मचारी, मेरे बगल में बैठा हुआ था, और मैंने अब तक केवल राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारी को एक्सपीरियंस किया था। पहली दफा मैं कोई दूसरे किसी सेंटर के ब्रह्मचारी को देख रहा था। उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी, शॉल, और वो अपने लेफ्ट हैंड से जप कर रहे थे, बीडबैग उनके लेफ्ट हैंड में। अब मैं, उसी साल मेरी दीक्षा हुई है, नया नया जो दीक्षित होता है, एक तो जैसे नया मुल्ला होता है ना, उस प्रकार का होता है, बहुत उत्साह होता है, हर नियम एकदम स्ट्रिक्टली जो पालन करने वाला। तो ऐसा मैं, तो मैंने देखा ये लेफ्ट हैंड से जपा कर रहा है, इतना बड़ा अपराध कर रहा है, लेफ्ट हैंड से जपा कर रहा है। तो मैं पहले शांत रहा, भाई मैं तो अभी कल का हूं, ये तो सैफ्रॉन का कोई ब्रह्मचारी है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बगल में बैठा है तो रहा नहीं गया। होता है ना कि जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण उनका विवाह कराते हो, जब दोनों का विवाह होता है, किसका, अनुमान का और प्रत्यक्ष का, तो उसकी संतान कौन पैदा होती है, गलत फहमी। तो यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने और मेरे मन में अनुमान, तो अनुमान और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अनुमान का प्रेम हुआ और उनका विवाह हुआ और कुछ क्षणों में संतान पैदा हुआ, गलत फहमी, नामकरण भी हो गया उसका। तो फिर मैं पूछ बैठा, मैंने बोला प्रभु जी आप ये लेफ्ट हैंड से क्यों चैंटिंग कर रहे हैं, तो गलत है, मतलब जजमेंट भी पास कर दिया, ठीक है कम से कम पूछ लिया, वहां तक ठीक था, वो भी बहुत इनसेंसिटिव था, लेकिन गलत है ना ये, तो आपको तो पता होना चाहिए, आप तो सैफ्रन ब्रह्मचारी। तो वो ब्रह्मचारी जो भी भक्त थे वो इतने नम्र, उन्होंने कहा हाँ प्रभु क्या करें, क्षमा करना, उन्होंने प्रूव नहीं किया अपने आप। तो मैंने कहा ठीक है, कर दिया क्षमा। तो मैं अपने आप को इतना बड़ा मान रहा था कि मैं इनको क्षमा भी कर रहा हूं, वो मैं आज तक दिन नहीं भूलूंगा। फिर कुछ समय बाद उनका वो जो शॉल है, वो शॉल जब नीचे हुआ तो उनका जो दाहिना हाथ था उसमें एक भी उंगली नहीं थी, केवल हथेली, एक भी उंगली नहीं थी। उन्होंने ये बताया नहीं मुझे, और वो जानबूझ के भी शॉल नीचे नहीं किए थे, ये मेरे बोलने के आधे घंटे बाद गलती से वो शॉल जब नीचे हुआ तो उनका जो दाहिना हाथ, जब ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा तो मैं वहां पर रोने लगा और गिर गया उनके चरणों में, मुझे क्षमा कीजिए। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ये कारण क्या है, कि जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण, ये किस्सा चैतन्य चरण प्रभु वो मुझे बता रहे कि चैतन्य चरण प्रभु राधा गोपीनाथ मंदिर में एक फेस्टिवल के पश्चात वो आते हैं फेस्टिवल का फीस्ट खाने के लिए, नीचे टेंपल हॉल से नीचे आते हैं और देखते हैं कि ज्यादातर जो फीस्ट के आइटम्स हैं खत्म हो चुके हैं, विशेष रूप से उनका जो फेवरेट स्वीट जो बना था उस फेस्टिवल में वो स्वीट खत्म हो गया था। फिर ठीक है जो भी बचा है लेकर प्लेट में बैठ जाते हो, सामने उनके राधा गोपीनाथ मंदिर का एक सीनियर ब्रह्मचारी वो भी अपना प्लेट लेके बैठ के खा रहे हैं और उनके प्लेट में वही स्वीट। तो कल्पना कीजिए आपका फेवरेट स्वीट आपको नहीं मिला और सामने बैठा हुआ है उसके प्लेट में स्वीट है, परंतु सीनियर ब्रह्मचारी है तो फिर कैसे उनसे मांगे। तो ये सीनियर ब्रह्मचारी ये जो सर्वर्स हैं उनको बुलाते हैं, अरे स्वीट है क्या, स्वीट है क्या। तो चैतन्य चरण प्रभु वो सोचने लगे, अरे भाई तुम्हारे प्लेट में ऑलरेडी स्वीट है, तुमको और स्वीट चाहिए। अब क्योंकि ये सीनियर ब्रह्मचारी हैं, सैफ्रॉन के हैं, तो सारे सर्वर यहां वहां लग गए ढूंढने के लिए, आकर बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी स्वीट तो खत्म हो गया, अरे देखो यहां वहां कहीं तो होगा ढूंढो। तो ये चैतन्य चरण प्रभु अंदर सोच रहे थे कि मतलब किस प्रकार का ये वैरागी है, ये सब मन में चल रहा हूं। और फिर हद कमाल हो गई, हद पार हो गई, जब एक बहुत ही जूनियर जो सर्विंग कर रहा था, होते ना सर्वर्स अपनी प्लेट बना लेते हैं, तो उसने अपनी प्लेट बनाई हुई थी, तो उसने अपने प्लेट का स्वीट लाकर ये सीनियर ब्रह्मचारी को दिया। ये देखने के बाद तो चैतन्य चरण प्रभु सोचने लगे कि लानत है, तो ये सीनियर ब्रह्मचारी जैसे ही वो देखे कि ये स्वीट लाकर वो सीनियर ब्रह्मचारी को दे रहे हैं, उन्होंने कहा अरे मुझे नहीं चाहिए, वो चैतन्य चरण प्रभु को नहीं मिला, जाके उनको दीजिए। अब क्या हुआ, जो इतना बड़ा ये गलत फहमी का गुब्बारा वो फूल चुका था, फूटा। क्या हो रहा था, प्रत्यक्ष को देखकर अनुमान का गुब्बारा फूल रहा था, फूल रहा था, फूल रहा था। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, और ये 60s की बात है, जब पहुंचे ही थे अमेरिका, तो प्रभुपाद के सन्यास गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज उनका देहांत हुआ। और क्योंकि प्रभुपाद का एक ठिकाना नहीं था, प्रभुपाद कभी वो अग्रवाल के घर पर, गोपाल अग्रवाल के घर पर, वहां से फिर न्यूयॉर्क में भी कितने उनके निवास स्थान बदले, हर महीने अलग अलग जगह पर रहते थे। तो यहां पर जो उनके गुरु बंधु गौड़िया वंट के, वो पत्र लिख रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे कि आपके सन्यास गुरु उनका देहांत हो गया है, और वो चिट्ठी प्रभुपाद तक पहुंची नहीं रही थी, और प्रभुपाद चिट्ठी लिख रहे थे अरे मुझे कोई मृदंग भेजवाएगा यहां पर, मेरे पास मृदंग नहीं है, कोई अगर असिस्टेंट मुझे मिल जाए, कोई ब्रह्मचारी असिस्टेंट मिल जाए मुझे मदद करने के लिए, मैं अकेला हूं यहां पर। चिट्ठी पे चिट्ठी प्रभुपाद मदद मांग रहे हैं, और यहां पर ये चिट्ठी पे चिट्ठी भेज रहे हैं कि, और इनको क्या लग रहा है, अरे ये कैसे शिष्य हैं, इनके सन्यास गुरु का देहांत हुआ है, उनका कोई इनको विलाप नहीं है, और ये केवल डिमांड कर रहे हैं ये भेजो वो भेजो, मृदंग भेजो, ब्रह्मचारी भेजो। क्या हो रहा था, गलत फहमी, यहां पर गलत फहमी का शिकार हो रहे थे। तो ये जो अनुमान है इसके पश्चात क्या होता है, अब यहां पर हम स्टोरी लाइन में कहां तक पहुंचे हैं कि सुग्रीव ने कुछ प्रत्यक्ष को देखकर अनुमान लगाया, वाली ने उस चट्टान को देखकर, प्रत्यक्ष को देखकर अनुमान लगाया, और कैसे तो कर फिर उस चट्टान को हटाया वाली ने, वाली बाहर आया, पहले से अब गलत फहमी का शिकार वाली बन चुके थे। जाके देखते हैं सिंहासन पर सुग्रीव बैठा हुआ, बस अब तो कंफर्म हो गया, अब ये देखो, ये प्रत्यक्ष देखने के बाद तो कंफर्म कंफर्मेशन कितना हो गया। और फिर सुग्रीव जब वाली को देखते हैं, अरे तो जिंदा है मेरे भाई, तो सुग्रीव इतना प्रसन्न होते हैं कि सुग्रीव उठ के जाते हैं स्वागत करने के लिए। वाली इतना जोर से मुक्का मारता है सुग्रीव को, सुग्रीव जिस भ्रम में अब थे कि इतना मैं खुश हुआ हूं अपने भाई को जिंदा देखकर, वो भ्रम से बाहर आते हैं। तो यहां पर ये दूसरा मुद्दा क्या है, एट्रिब्यूशन एरर। एट्रिब्यूशन एरर क्या होता है, ये अनक्लियर फैक्ट्स और हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस का समन्वय है। जब फैक्ट्स क्लियर नहीं होते, देखिए गलत फहमी कभी भी वैक्यूम से क्रिएट नहीं होती, कुछ ना कुछ फैक्ट्स होंगे। जैसे कि कैकई के अंदर मंथरा ने गलत फहमी कैसे पैदा करी, कैकई उसे कोई एतराज नहीं था कि रामचंद्र जी राजा बन रहे, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी खुशखबर क्या हो सकती। लेकिन जब मंथरा ने कैकई को यह बात कही, अरे ध्यान दो, इतनी जल्दबाजी में राजा क्यों बनाया जा रहा है, कल की कल, इतना बड़ा निर्णय और इतना बड़ा समारोह भरत की गैर मौजूदगी में क्यों हो रहा है, अरे दिमाग लगाओ। तब जिसको बोलते ना आता पेटली, तो फैक्ट था ये, इसके पीछे का भी इतिहास है कि दशरथ वो रामचंद्र जी को राजा भरत के गैर मौजूदगी में करना चाहते थे, उसका इतिहास है, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो फैक्ट था। तो होता क्या है, मंथरा ने उस फैक्ट को लिया, गलत फहमी कब पैदा होती है, व्हेन यू टेक स्मॉल फैक्ट एंड यू स्पिन अ स्टोरी अराउंड इट। तुम वो छोटे से जिसको असलियत कहेंगे, छोटी सी असलियत को लेकर तुम बुनते हो एक गलत फहमी की स्वेटर और फिर पहनाते हो उसको दूसरों, और वो भी गर्मी के मौसम। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन अनक्लियर फैक्ट्स। हां, फैक्ट था कि चट्टान सुग्रीव ने रखी थी, इज अ फैक्ट। लेकिन उस फैक्ट के ऊपर जो स्टोरी बुन की, स्पिन की, किसने, वाली ने। और यह भी फैक्ट था, सुग्रीव ने देखा कि वाली बाहर नहीं आ रहे हैं और हो सकता है कि वो मायावी वो आ जाए बाहर, तो उसके भी इंटेंशन बुरे नहीं थे सुग्रीव के। जैसे एक बिल्डिंग में दो औरतें, मिसेज शर्मा मिसेज वर्मा, तो मिसेज शर्मा दौड़ती हुई आती है मिसेज वर्मा के पास, कहती है भाभी जी, भाभी जी जल्दी से बेलन दीजिए, मेरे पति आ रहे हैं, जल्दी से बेलन दीजिए, मेरे पति आ रहे हैं। तो मिसेज वर्मा बेलन देते हुए कहती है जल्दी से लौटा देना, एक घंटे बाद मेरे भी पति आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, नहीं, दोनों शर्मा आंटी और वर्मा आंटी अपने अपने पति के लिए गरम गरम रोटियां सेकना चाहते हैं। कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान मत लगाइए। अब ये बात अलग है कि बेलन जो है वो रोटियों को गोल करता है और पत्तियों को सीधा करता है। तो ये जो एट्रिब्यूशन एरर है, एट्रिब्यूशन एरर आपको समझ में आया, अनक्लियर फैक्ट्स मिक्स्ड विथ प्री कंसीव्ड नोशंस। तो वाली के अंदर ये बात कहां से आई, क्योंकि वाली किसके पुत्र हैं, इंद्र के, इंद्र के जीन्स हैं वाली के अंदर, ये बात समझिए, इंद्र के जीन्स क्रोमोसोम्स हैं वाली के अंदर, और इंद्र का हर समय एक कंसिस्टेंट इंद्र के अंदर एक व्यवहार क्या देखा जाता है, इनसिक्योरिटी लीडिंग टू रिवेंज। गोवर्धन लीला में हम क्या देखते हैं, इनसिक्योर इंद्र टुक रिवेंज, और बहुत से प्रसंगों में इंद्र हर समय इनसिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं। तो क्योंकि वो वाली के अंदर वो जीन्स थे, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट, ये चट्टान सामने रखी गई और बाद में सुग्रीव को जब बैठा हुआ वहां पर देखा तो वो अपने पिता के संस्कार उभर कर बाहर आए। तो ये है रीजंस फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर हियरिंग द फैक्ट्स फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेस, कि ठीक है जैसे कई कई ने मंथरा से सुना ये सब जो भी समाचार, और मंथरा ने जैसे हमने कहा कि छोटी सी असलियत को लिया और वो बुन दिया, वो कहानी बुन दी। तब होता क्या है कि जब हम अनरिलायबल सोर्सेस से सुनते हैं, तो कई कई यदि वहां से मंथरा से सुनी भी, ठीक है सुन लिया तुमने मंथरा से, उसके पश्चात दशरथ को बुलाकर पूछ लेती, अपने पति को पूछ लेती है कि सच है क्या जो मंथरा बोल रही, नहीं, वशिष्ठ मुनि उनको बुलाकर पूछ लेती जो उनके गुरु हैं, कुल गुरु हैं, उनको बुलाकर पूछ लेती कि क्या ये सच है कि भरत को इसलिए भेजा गया ननिहाल, नहीं। तो क्या है, अनरिलायबल सोर्सेस से सुनना और फिर खिचड़ी पकाना। जैसे एक घर में काम वाली बाई, वो अपने मालकिन के पास जाती है और मालकिन को कहती है, मेम साहब ये जो आप मुझे साड़ी देते हो ना आपकी हर दिवाली पर, ये मालकिन अपने स्वयं की सबसे अच्छी साड़ी अपने काम वाली बाई को दे देती थी। तो कहती ये लो मिलनी चाहिए मुझे आपकी ये साड़ी। तो उसने पूछा क्यों क्या हुआ, इतनी अच्छी तो साड़ी है। नहीं नहीं, ये जब भी मैं ये साड़ी आपकी पहनती हूं ना, सांप देखते नहीं मेरे तरफ। अब बिना क्लैरिफिकेशन किए क्या किया इस कामवाली बाई ने, जो मंथरा ने किया। तो पत्नी ने फिर उस शाम एक अलग डिनर पकाया अपने पति के लिए। अगर वो क्लैरिफाई कर लेती, हो सकता था कि कामवाली बाई और इसके पति के बीच में व्हाट्सएप में झगड़ा हुआ होगा, जिसके वजह से वो बदला निकाल रही थी कामवाली बाई साड़ी को सामने रखकर। सो हियरिंग द फैक्ट्स फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेस। फिर है हियरिंग ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। अब इसको बोलते हैं गॉसिप, प्रजल्प। प्रजल्प क्या है, वेन वन पर्सन टॉक्स टू द अदर पर्सन अबाउट द थर्ड पर्सन इन विच दिस पर्सन इज नीदर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, इसको बोलते हैं गॉसिप। ये डिक्शनरी डेफिनेशन है विथ एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं प्रजल्प। तो होता है ना, दो लोग मिल जाते हैं और घंटों घंटों तीसरे के बारे में, ऐसी दो औरतें मिलकर 3 घंटे तक वो तीसरी औरत के बारे में बोल रहे हैं। 3 घंटे बाद वो एक औरत दूसरे को कहती है, अगर जाऊ दे आपल्याला काय करायचं। तो 3 घंटे तक क्या चल रहा था, 3 घंटे बोलने के बाद अगर जाऊ दे आपल्याला काय करायचं। तो ये क्या होता है, हियरिंग ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो एक बार रात को बच्चा अपनी मां से कहता है, मम्मी स्टोरी सुनाओ ना मम्मी, स्टोरी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही है। रात के 12:30 बजे हुए, बच्चे को नींद नहीं आ रही, मम्मी को कह रहा है मम्मी स्टोरी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही। मम्मी कहती है बेटा मुझे भी नींद नहीं आ रही है। बेटा पूछता है मम्मी आपको क्यों नहीं नींद आ रही है? क्योंकि तेरे पापा अब तक घर नहीं आए और ऑफिस के लैंडलाइन पर मैंने बहुत कॉल किया, कोई फोन नहीं उठा रहा है और वो कहे थे कि ऑफिस में है, तो मुझे भी नींद नहीं आ रही है। पापा आ जाएं, जब मैं उनको पूछूंगी तो हम दोनों को बहुत स्टोरियां सुनाएंगे। तो रुक जाओ, पापा का आ जान दो, बहुत स्टोरियां सुनने मिलेगी। तीसरा कारण, जंपिंग टू कंक्लूजन्स विदाउट गिविंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट। वाली ने बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि क्रिकेट में दो एम्पायर होते हैं और जब कोई ऐसा डिसीजन लेना है दोनों एम्पायर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो वो थर्ड एम्पायर को बुलाते हैं। क्या है उसको कहते हैं? बेनिफिट ऑफ डाउट। तो वाली ने कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दिया ही नहीं, सीधा मुक्का मारकर दंड देना, जजमेंट पास कर दिया, दंड भी दे दिया, वहां पे शुरू कर दिया। अरे कम से कम पूछ लेते कि क्या तूने किया, तो सुग्रीव अपना कुछ तो वो पेश करता, सफाई पेश करता, नहीं उसको मौका ही नहीं दिया। जंपिंग टू कंक्लूजन्स विदाउट बेनिफिट ऑफ डाउट। और यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह क्या है कि उस व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता कितना घनिष्ठ है और कितना कनिष्ठ है, यह निर्भर करता है। कैसे? जब कोई अपना व्यक्ति होता है तो कितना भी बुरा कर दे हमारे साथ हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं। जब कोई अपना व्यक्ति होता है वो ज्यादा सो लिया तो कहते हैं अरे थका हुआ होगा यार, परंतु जब हमको कोई पसंद नहीं और वो 1 घंटे भी सो जाए, आलसी टट्टू सोता रहता है दिन। हमें कोई पसंद है और अगर वो खाए जा रहा है तो हम क्या कहते हैं? देखो कितना रंगीला आदमी है, कितना प्रसाद प्रेमी है। और हमें कोई पसंद नहीं, वो दूसरी बार कुछ चीज मांग ले, हावरट। तो एक कॉलेज में एक लड़की, उसका एक बीएफ, तो वो अच्छी दिखने वाली, उसका एक बीएफ और बहुत से दूसरे भी लड़के ये अच्छी दिखती है इसलिए आंखें सेकते रहते थे। तो ये कहती है एक लड़का जो इसका बीएफ नहीं है, जो इसको घूरता रहता था, तो उस लड़के को कहती है, उस लड़के के बारे में कहती है, कमीना देख कैसे देखता रहता है। क्या कहती है? कमीना देख कैसे देखता रहता है। और इसका खुद का जो बीएफ बॉयफ्रेंड वो नहीं देखता था इसे शर्माते हुए, तो क्या कहती है? कमीना देख भी नहीं रहा है। दोनों के ग्रामर में अंतर है। इसने एक को क्या कहा? कमीना देख कैसे देखता रहता है। दूसरे को क्या कहा? कमीना देख भी नहीं रहा है। अब कमीना करे तो क्या करे? तो यहां अब जब वाली ने सुग्रीव के ऊपर ऐसा केवल एक मुक्का नहीं मारा, इतनी जोर जोर से सुग्रीव को वाली मारने लगा, तो सुग्रीव जिसको कहेंगे दुम तो थी सुग्रीव की पहले से, दुम दबाकर सुग्रीव को भागना पड़ा वहां से, रातों रात या उसी क्षण भागना पड़ा। और भागते भागते सुग्रीव अकेला वो गया पंपा सरोवर, और पंपा सरोवर में जाकर छिप गया। और पंपा सरोवर वो किष्किंधा क्षेत्र के पास, वहां पर वाली नहीं आ सकता था क्योंकि उसका भी एक इतिहास कि वाली को श्राप मिला हुआ था मातंग ऋषि द्वारा। तो मातंग ऋषि वो वहां पर रहते थे और मातंग ऋषि ने श्राप दिया था वाली को। एक दफा वाली एक राक्षस को मारा और राक्षस को मारने के बाद वाली उस राक्षस को घुमा रहा था तो उस राक्षस के शरीर से रक्त की बूंदें मातंग ऋषि के यज्ञ कुंड में गिरी। तो मातंग ऋषि का वो यज्ञ कुंड कंटेमिनेट हो गया। तो फिर मातंग ऋषि ने श्राप दे दिया वाली को, तू इस पूरे क्षेत्र में कभी फटका भी तो फटके पड़ेंगे तुझे। तो वाली को श्राप मिला था और ये सुग्रीव जानते थे, तो सुग्रीव वहां पर छिपे हुए। अच्छा अब देखो वाली ने और आगे क्या किया, सुग्रीव को बिना उसकी सफाई पेश किए भगाया। न केवल भगाया बल्कि सुग्रीव का परिवार, सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। देखो अपने छोटे भाई की पत्नी को, रुमा को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। तो जब यह प्रसंग है कि सुग्रीव जब रामचंद्र जी से मिलते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं, और रामचंद्र जी जब ये सुनते हैं कि वाली ने ऐसा किया सुग्रीव के साथ, तो रामचंद्र जी अब सुग्रीव की मदद करते हैं। और ये पूरा प्रसंग जहां पर वो कहते हैं कि ठीक है तुम ललकारो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो सुग्रीव जो इतना डरा हुआ इतने वर्षों से हिम्मत करता है, रामचंद्र जी के कहने पर जाता है ललकारता है। और उस समय रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर पेड़ के पीछे, पहली दफा जब इनका द्वंद्व युद्ध होता है तो उसमें रामचंद्र जी बाण नहीं मार पाते क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाते, ये दोनों एक समान दिखते हैं, पहचान ही नहीं पाए वो। फिर कहते हैं कि जाओ, और अब वो लक्ष्मण की जो माला है वो सुग्रीव के गले में डालकर कहते हैं फिर से जाओ। तो जब फिर से जाता है, अब इतना लात घूंसे खाकर आया हुआ, फिर से उसको रामचंद्र जी विश्वास दिलाते हैं, फिर से जब जाता है सुग्रीव, तो वाली को आश्चर्य होता है कि अभी अभी ये मुझसे पिटकर गया है, परंतु तारा वाली की पत्नी तारा वो वाली से कहती है बिल्कुल मत जाना, सेकंड टाइम बिल्कुल मत जाना। वाली ये नतीजा होता है जब पति पत्नियों का नहीं सुनते, रामायण उदाहरण है ये हाल होता है। क्योंकि ज्यादा जो वाली की पत्नी वो अलर्ट थी, उसको पता था, उसके गुप्तचरों से उसको पता था कि सुग्रीव जो है उसने अलायंस कर लिया है राम और लक्ष्मण के साथ, तो उनके सपोर्ट से ये सुग्रीव इतना चिल्ला रहा है। लेकिन वाली ने सुना नहीं, गया फिर से। और फिर जब रामचंद्र जी ने बाण चलाया और वाली को वहां से नीचे गिरा दिया, तो वाली मरा नहीं तुरंत, राम बाण से वाली तुरंत मरा नहीं। क्यों? अब सबसे पहले तो वाली वो जब उसे पता चला कि छिपकर मुझे किसने मारा है, और वो भी राम, वाली जानता था कि कौन है, इतना सुना हुआ था, तो वाली फिर ये प्रश्न पूछता है, बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना कि रामचंद्र जी ने ऐसे छिपकर वाली को क्यों मारा, तो वाली ने भी प्रश्न पूछा। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि जो तूने किया है सुग्रीव के साथ तेरे लिए यही दंड उपयुक्त था, और ये सब कुछ सुनने के पश्चात, और रामचंद्र जी कहते हैं कि तूने न केवल सुग्रीव, जो कि सुग्रीव की हम गलती नहीं कह सकते, सुग्रीव की गलत फहमी थी, बिना सुने तूने सुग्रीव को देश निकाला किया, न केवल वो सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया, ऐसा गर्हित कार्य तूने किया। और रामचंद्र जी कहते हैं यदि तुझे ये लग रहा है कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, तो मैं अभी ये बाण निकालता हूं और तुझे तेरे प्राण वापस लौटाता हूं। रामचंद्र जी ये बोलते हैं। वाली ये सब कुछ सुनने के बाद फिर फाइनली वो होश में आता और कहता है कि नहीं, मैंने गलती करी, बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है, नहीं आप ये बाण मत निकालिए मेरे शरीर से। तो ये स्टोरी का अंत क्या है? रिकंसिलिएशन बिटवीन वाली एंड सुग्रीव, सुलह। वाली और सुग्रीव में सुलह रामचंद्र जी ने कराई, कौरव और पांडवों में सुलह कभी नहीं हुई, रिकंसिलिएशन कभी नहीं हुआ। तो तीन चीजें वाली ने करी। ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, एक्नॉलेज हिज मिस्टेक, ही अपोलोजाइज, उसने माफी मांगी सुग्रीव से, अपने छोटे भाई से, और उसने अमेंड किया अपने आप, गलती को सुधारा। कैसे? सुग्रीव को एक मोतियों हीरों की माला इंद्र ने, उनके पिता ने दी थी, वाली ने, वाली को इंद्र ने एक हीरों की माला दी थी, और ये माला जब तक वाली के गले में रहती तब तक वाली के प्राण रहते, मर नहीं सकता था वाली, तो इसलिए वाली तुरंत मरा नहीं। ये वार्तालाप चल रहा है, बाण लगा हुआ है, उस समय वाली वो माला निकालता है। माला निकालना मतलब अभी मरने वाला है वाली, और वो माला निकालकर, साधारणतः एक पिता अपने पुत्र को देगा ना, वहां पर तारा है, अंगद है, अंगद वाली का पुत्र, तो अंगद को देगा कोई भी, कोई पिता, परंतु उस माला को निकालकर वाली सुग्रीव के गले में डालता है। इसको बोलते हैं अमेंडमेंट, रिकंसिलिएशन विथ अमेंडमेंट। और तारा को और अंगद को मरते मरते वाली कहता है, मरते मरते वाली कहता है कि कभी भी तुम सुग्रीव के प्रति कोई ग्रज मत रखना, कभी तुम सुग्रीव के प्रति कोई द्वेष भाव, कोई क्रोध मत रखना, क्योंकि सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। एक्सेप्ट, अपोलोजाइज, अमेंड। और प्रभु श्री राम को वाली कहते हैं कि अरे जीवन तो कईयों को मिल जाएंगे, मुझे कई जीवन मिल जाएंगे, कई जन्म मिल जाएंगे, परंतु ऐसा मरण आपके हाथों जो मुझे प्राप्त हुआ है वो अति दुर्लभ है, इसलिए मुझे ये मरण स्वीकार है आपके हाथों, मुझे नहीं और जीना। अब देखिए ये जो हुआ सुग्रीव और वाली के बीच, वाली उन्होंने जैसे ही वो हीरों का हार सुग्रीव को दिया, वाली ने अपने प्राण छोड़े, और अब अपने मृत भाई, बड़े भाई के शव के निकट सुग्रीव बैठे हुए विलाप कर रहे हैं, और सुग्रीव वो बोलने लगे कि मेरे वजह से मेरे बड़े भाई को मरना पड़ा, तो उन्होंने वहां पर प्रण लिया कि मैं मेरे भाई की चिता में अपने प्राण त्याग दूंगा। तब रामचंद्र जी, लक्ष्मण वो समझाते हैं और सुग्रीव को रोकते हैं। तो देखिए ये दोनों के अंदर जो सुलह हुई वो अंत में वो मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में और राइट अंडरस्टैंडिंग में परिणित हुई प्रभु श्री राम के इंटरवेंशन में। तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे, द टेस्ट ऑफ अ मैच्योर रिलेशनशिप इज नॉट हाउ वेल यू अंडरस्टैंड ईच अदर, बट हाउ वेल यू मैनेज द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। तो इसमें मुझे एक पद याद आ रहा है, तुम्हें जाना था तुम चले गए, तुम्हें जाना था तुम चले गए, मुझे कुछ खोना था मैंने खो दिया। तुम्हें जाना था तुम चले गए, मुझे कुछ खोना था मैंने खो दिया। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे जिंदगी का एक क्षण गया, मेरे लिए एक क्षण में मेरी जिंदगी चली गई। इसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर विच समटाइम्स क्रिएट्स अ वॉल एज बिग एज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। डोंट मेक relationships based on shallow understandings. Don't break relationships based on silly misunderstanding. तो वाली और सुग्रीव में शुरुआत कहां से हुई? जैसे हमने क्या कहा था कि आंखों ने कुछ देखा और फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान। आंख धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, घर तड़पना पड़े याद में उनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में चाहे भेजो प्यार के हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो रामायण पर आते हैं फिर से। तो देखिए ये दृश्य जहां पर ऐसी गलत फहमी इन दोनों के बीच में, ऐसे ये दो भाई जिनके जीवन की शुरुआत हुई ऐसे प्रेम से, ऐसे भ्रातृ प्रेम से, और यदि ये पूछा जाए कि क्या वाली और सुग्रीव, जहां पर सुग्रीव को प्राण छोड़ने पड़े, सॉरी वाली को प्राण छोड़ने पड़े और सुग्रीव अपने प्राण छोड़ने के लिए उतारू हुए, क्या इनकी स्टोरी का ये हैप्पी एंडिंग था? हाँ, इनकी स्टोरी का ये हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग केवल दो जी रहे हैं उससे नहीं होता, जिसको कहते हैं एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, नहीं। जहां पर दो व्यक्तियों की गलत फहमी दूर होकर सुलह हो जाए, मरते मरते वाली की गलत फहमी दूर हुई और मरने के पश्चात सुग्रीव ने पश्चाताप किया, कभी वाली के प्रति कोई रंज नहीं रखा, और यह हुआ किसके वजह से? हुज इंटरवेंशन? प्रभु श्री राम। तो इसलिए जब हम दो व्यक्तियों के बीच में गलत फहमी देखते हैं या दो व्यक्तियों जब गलत फहमी का शिकार बनते हैं, तो क्या लाना है हमें? प्रभु श्री राम को लाना है उनके बीच में। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, ये है राम रसायन। तो जब ऐसा राम रसायन हमारे पास होगा, तब जाकर जो वाली और सुग्रीव के बीच सुलह हुई अंततः, जिसको हम कहेंगे दी हैप्पी एंडिंग of these two brothers, when the misunderstanding turned into the right understanding, और वो है प्रभु श्री राम की उपलब्धि। प्रभु श्री राम को कोई जरूरत नहीं थी, उनको न तो सुग्रीव की सहायता की जरूरत थी, उनको न तो वाली की सहायता की जरूरत थी, वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व सक्षम भगवान है, उनको किसकी आवश्यकता है। परंतु वो ये सब कुछ किए ताकि सुग्रीव और वाली के बीच में सुलह हो। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।